बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 23 अप्रैल दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया, नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसले को गलत बताया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जनता की चुनी सरकारें गिराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल क्यों हो? अब तक भारत में 125 से ज्यादा बार इस अनुच्छेद का इस्तेमाल हो चुका है, सरकारें बर्खास्त हो चुकी हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है, संविधान के मुताबिक अगर राज्य में काम न हो पा रहा हो, संवैधानिक संकट हो, तो केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इन विवादों से भारत का संघीय ढांचा कितना कमजोर होता है, चर्चा इसी मुद्दे पर हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बांग्लादेश में राजशाही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर रिजाउल करीम सिद्दीकी की हत्या के पीछे संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों का हाथ हो सकता है। सिद्दीकी की हत्या घर से यूनिवर्सिटी जाते वक्त की गई। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम शहर राजशाही में रहने वाले सिद्दीकी अंग्रेजी पढ़ाते थे। वो एक साहित्यिक पत्रिका भी निकालते थे और संगीत स्कूल भी चलाते थे। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों के दौरान धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों पर भी इसी तरह के हमले हुए हैं। पाकिस्तान के सिख नेता सूरन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली है। सूरन सिंह की कल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो प्रांतीय असेंबली के सदस्य थे और अल्पसंख्यक मामलों पर मुख्यमंत्री परवेज खटक के सलाहकार थे। बीते 3 साल में ये चौथा मौका है जब असेंबली के किसी सदस्य की इस तरह से हत्या की गई है। ब्रिटेन दौरे पर गए अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने युवाओं से कहा है कि वो निराशावाद को खारिज करें। लंदन के टाउन हॉल इवेंट में ओबामा ने युवाओं से दुनिया से अलग होने के आह्वान को नकारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन जैसे संस्थानों के जरिए यूरोप में शांति और स्थिरता आई है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापारिक समझौते को लेकर उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई ऐसी समस्याओं का जवाब है जिन्हें लेकर लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा,
The answer to globalization and income inequality and lack of wage growth.
वैश्वीकरण, आय में असमानता और भत्तों में कम इजाफा होने का जवाब ये होना चाहिए कि हम व्यापार के दरवाजे और आगे बढ़ने की सीढ़ी को खींचने की कोशिश न करें। विचार ये सुनिश्चित करने का है कि ऐसे व्यापारिक समझौते में हम उन मानकों और मूल्यों का ध्यान रखें जो श्रमिकों के अधिकारों, पर्यावरण के मानकों को ऊपर उठाने में मदद करें, मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष में सहायक हों। देश एक दूसरे के साथ कैसे व्यापार करें, हमारे मूल्य इससे जुड़े होने चाहिए। ये थे बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल दक्षिणी तुर्की के प्रवासी शिविरों का दौरा कर रही हैं। वो ये पता करने की कोशिश में है कि इन शिविरों में सीरिया के शरणार्थी किस स्थिति में रहते हैं। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क भी सीरिया की सीमा के करीब बने कैंपों का मुआयना करने वाले हैं। पिछले महीने प्रवासियों को लेकर हुए समझौते के बाद यूरोपीय यूनियन के अधिकारी शिविरों में हुए सुधार का जायजा लेना चाहते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ सोमवार को कांग्रेस के बागी विधायकों का पक्ष सुनेगी। बागियों को स्पीकर की ओर से अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप सब जान चुके हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1800-102-7001। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जिस तरह से सरकारों को बर्खास्त किया जाता है, इससे संघीय ढांचा कितना टूटता है। जब संविधान बना तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया, लेकिन क्या इससे केंद्र मजबूत हुआ या फिर राज्य कुछ कमतर रह गए? मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी मौजूद हैं। विनोद जी, जब शक्तियों का बंटवारा हुआ, संविधान बन गया, तो जिस तरह से धारा अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ, 125 से ज़्यादा के आसपास इसका इस्तेमाल हो चुका है।
ये बात सच है, पंडित जी के ज़माने से हो रहा है। पंडित जी ने स्वयं EMS नंबूदरीपाद की सरकार, जो कि वाम खेमे से निकली हुई पहली जमहूरी तरीके से इलेक्टेड सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको बर्खास्त किया था और 3-4 और सरकारों को बर्खास्त किया था। और इसका तो मैं समझता हूँ थोक में भी इस्तेमाल हुआ है।
इंदिरा गांधी ने 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया।
77 में मोरारजी की सरकार ने 9 सरकारों को बर्खास्त किया और उसके जवाब में 80 में इंदिरा जी ने 9 सरकारों को बर्खास्त किया।
तो क्या ये विद्वेष की राजनीति कहेंगे इसे?
देखिए, मैं समझता हूँ ये असहनशीलता की बात है। ये जमहूरियत में जो कंट्रोल का सिस्टम होता है ना, वो अपवाद है और ये समझते नहीं है लोग। और क्योंकि परस्पर इसका दुरुपयोग होता था 356 का, कि बात यहाँ तक आन पहुँची कि 94 में जो बम्बई केस पे फैसला हुआ, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अंकुश लगा दिया राष्ट्रपति के अधिकारों पे, कि आप 356 का जब इस्तेमाल करेंगे तो उस पर विचार कर सकती है कोर्ट कि वो सही इस्तेमाल हुआ है या गलत इस्तेमाल हुआ।
ये तो समझने की बात है कि किस तरह से उसका सरकारें जो बर्खास्त होती हैं उसके पीछे ग्राउंड किया दिए जाते हैं। कार्यक्रम में सीधे शामिल हो रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी साहब। भगत सिंह जी, आप सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये सारी उठापटक जो है वो उत्तराखंड से फिलहाल वहाँ जारी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके लिए सही उचित कदम यही था? 356 कहती है कि यदि राज्य में मशीनरी अगर चरमरा जाए, संवैधानिक ढांचा चरमरा जाए, तो 356 लगेगी।
देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बहुत बार लोग इसमें बार बार बम्बई केस को
उदाहरण देते हैं।
उस केस में कुछ लोग डिफेक्ट होकर के चले गए, होते में ही सरकार भंग कर दी थी। ये केस जो है, इट इज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल उससे भिन्न है।
किस तरह से? यहाँ तो राज्यपाल ने रिपोर्ट भी नहीं दी थी।
एक मिनट पूरा सुन लीजिए।
जी जी जी।
इसमें क्या है कि विधानसभा में विनियोग विधेयक पर, अप्रोप्रिएशन बिल पर, मनी बिल पर डिविजन मांगा गया। जो परंपरा है, कन्वेंशन है, रूल है, अध्यक्ष जी ने जो मनमानी की है कि उन्होंने वॉइस वोट से उसको स्वीकार करके मान के बाहर चले गए, क्लॉज बाय क्लॉज पास होता है वो भी उन्होंने नहीं कराया। तो मतलब वो तो इतनी तानाशाही अध्यक्ष जी ने की है कि वो मतलब शायद ही कोई भी समझदार व्यक्ति जो थोड़ी से भी पार्लियामेंट्री बात का ज्ञान रखता है वो कहेगा कि साहब ये तो अध्यक्ष के लायक डिसीजन है ही नहीं, ये तो गलत है। एक सेकंड, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना ये है कि जब वित्त विधेयक फेल हो गया है तो सरकार को तभी डिसमिस हो जाना चाहिए था और असेंबली ये सस्पेंड इन एनिमेशन होना चाहिए थे और उसके बाद फिर नेचुरली उसमें फ्लोर टेस्टिंग होता तो कोई ऐसा तो ये एक सामान्य नियम है। तो जब नहीं गवर्नर ने किया तो हम लोग राष्ट्रपति जी से मिले, एक बार मिले, दोबारा मिले, जब हमने उनको ठीक से समझाया तो उनकी समझ में आया। एंड बीइंग ए सत्तेरी, इतने स्टेट्समैन है, पॉलिटिशियन है, अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा कि नियमों का उल्लंघन हुआ तो रिपोर्ट मंगाई होगी, रिपोर्ट आई तो उन्होंने राष्ट्र शासन लागू कर दिया। इसमें क्या गड़बड़ हो गई?
कोश्यारी जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद शर्मा है, हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ मैं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो महाराष्ट्र की असेंबली में वॉइस वोट से कॉन्फिडेंस वोट मान लिया गया था, उस पर आपको क्या कहना है? उसके खिलाफ, सुन लीजिए मेरी बात, अब आप भी पूरी तरह से उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट तक गई लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं आई, इसलिए शायद कि सर्वोच्च न्यायालय भी जो स्पीकर का डिसीजन होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करता। दूसरी बात, आपने पूरी बात कर लूं, एक ही बात है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने आधार बिल को मनी बिल बना के लोकसभा में पास कर दिया और स्पीकर साहिबा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और जब वो राज्यसभा में गया तो आपका परस्पर ये आर्गुमेंट था कि स्पीकर ने फैसला ले लिया, आपस पे बातचीत नहीं हो सकती,
क्योंकि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है ये अंतिम फैसला स्पीकर का होता
है। ये बात सही है, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिन मनी बिल था, इसमें दो राय नहीं। कोश्यारी जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस पर स्पीकर ने अपनी मोहर लगा दी कि वॉइस वोट से वो पास हो गया है। अब उसमें कोई न्यायालय, उसमें कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं अच्छे से।
अच्छा आप मैं एक चीज बताऊं, आप तो इतने समझदार हिंदुस्तान टाइम्स के वो हो, आप ये बताइए कि हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति राजा नहीं है, राष्ट्रपति के स्क्रूटनी की जा सकती है, हम भी कहते स्क्रूटनी की जा सकती है, जब राष्ट्रपति की विवेचना उसकी विषय की जा सकती है, है? कि भाई इफ इवन द किंग कैन डू रॉन्ग, पहले कहते थे किंग कैन डू नो रॉन्ग, इवन इफ द प्रेसिडेंट कैन डू रॉन्ग, तो क्या आप ये मान के चलते हैं, क्या कोर्ट ने कहा क्या नहीं कहा? आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, क्या कोर्ट ने कहा या क्या नहीं कहा? बट व्हाट आवर कंसर्न सेज कि अगर माननीय राज्यपाल राष्ट्रपति विधानसभा अध्यक्ष कुछ भी कह दे तो क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? आखिर उसमें नियम है, सुनिए मेरे, अरे भैया सुनिए,
बहुत खतरे की लाइन से अंदर जा रहे हैं आप।
नहीं,
आप
नहीं।
आप चुनिंदा व्यक्ति हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो असेंबली के फैसले पे, स्पीकर के फैसले पे बैठ जाएगी। जब 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 कैश फॉर वोट स्कैम में जब लोकसभा ने निष्कासित किए थे एमपीज, वो सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे, क्या उनको मिली थी सुनवाई? नहीं मिली थी। आप इस इसमें मत पड़िए, ये बहुत डेंजरस, ये बहुत डेंजरस मामला है।
दिस इज नो डेंजर, ये तो मैं बहुत बिल्कुल लेमैन जो समझ सकता है, मैं विद्वान हूँ, कानून की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि क्या जो हमने डिवीजन की बात की, आप एक सीधा समझे उत्तर दीजिए, आप मेरे समझे इसको, कि अगर हम कल से ये मान के चले कि डिवीजन मांगने पर अगर डिवीजन अध्यक्ष नहीं मानता, स्पीकर नहीं मानता, तो इसका मतलब यह है कि फिर डिवीजन की जरूरत ही क्या? अगर स्पीकर ही अंतिम फाइनल है तो फिर हम डिवीजन ही क्यों मांगे? नहीं करना तो फिर नहीं करना।
चलिए कोश्यारी साहब, हम लोग एक छोटी सी बहस में फंस गए हैं, मैं इससे थोड़े से आगे निकलता हूं। कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला था राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का, वो सही फैसला था, और जो मशीनरी है वो क्या टूट गई थी? सिर्फ इतनी सी बात।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई फैसला नहीं है, ये केंद्र सरकार का फैसला है।
केंद्र सरकार में मंत्री परिषद,
ये राष्ट्रपति जी के उसमें दस्तखत है। आप जैसे विद्वान आदमी अगर उसको बीजेपी का फैसला
नहीं, नहीं,
मानेंगे,
केंद्र
तो
सरकार
मुझे
का,
लगना कि मुझे
जी, सामूहिक मंत्री परिषद की जिम्मेदारी होती है, ठीक
है ना?
ठीक है,
आप बता, इतने सीनियर आदमी हो और आपने कह दिया, कोई गांव का आदमी कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने क्या, तो समझ में आता है?
नहीं, मैं मानता हूँ कि ये केंद्र सरकार और केंद्र सरकार जो मंत्री परिषद है उसका फैसला होता है, तो भाई पार्टी तो इसमें है ही नहीं, मैं मानता हूँ। जी कोश्यारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इस समय जो हरीश रावत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हरीश जी।
हेलो
जी, हरीश जी नमस्कार, मोहनलाल शर्मा बोल रहा हूँ बीबीसी से।
हेलो
जी, हाँ हरीश जी, आवाज़ आ रही है आपको?
जी आ रही है
जी। भगत सिंह कोश्यारी जी भी आपको सुन रहे हैं, और अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि धारा 356 जो अनुच्छेद 356 है, उसका इस्तेमाल कितना सही और कितना गलत। भाई आप ये बताइए कि जब एक स्टिंग ऑपरेशन का टेप निकलता है तो सरकार क्या करती, मतलब आपको सामने जान क्या करती?
देखिए, जो स्टिंग ऑपरेशन है, पहली बात तो यह है कि स्टिंग के कुछ कायदे कानून है जो केवल मीडिया को यह अधिकार है, और जो मीडिया हाउस उसको करवाता है उसको 24 घंटे के अंदर उसको अपने चैनल पर दिखाना होता है।
हालांकि उसकी कोई प्रमाणिकता है नहीं है, उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है।
मैं छोड़ दीजिए उसकी प्रमाणिकता, हम मान लेते हैं कि प्रमाणिकता है उसकी, और वो उस स्टिंग को अपने चैनल पर दिखाते हैं। और इस मामले में अपने चैनल पर स्टिंग को नहीं दिखाया गया है, स्टिंग को भाजपा को सीडी को बेचा गया है, या कुछ प्राइवेट लोगों को जो है सीडी को भेजा गया है, और उनके द्वारा सेलेक्टेड पोर्शंस को दिखाया गया है, और पोर्शंस को भी इस तरीके से दिखाया गया है कि जो हमारे मुंह से निकल नहीं रहे शब्द, उन शब्दों को प्रॉम्प्टिंग करवाई जा रही है कि ये कहा गया, ये कहा गया, जबकि वास्तविकता ये है कि स्टिंग करता खुद ही कह रहा है कि कुछ एमएलए की बोली लगा रहा है, कह रहा है वो खरीदे जा सकते हैं, कितने में खरीदे जा सकते हैं ये भी वो खुद ही बता रहा है, और उसके बाद जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं, दूसरा व्यक्ति उसके सामने के बैठा कह रहा है, तो वो कह रहा है कि पैसे का इंतजाम भी मैं ही करूंगा। और तो फिर एक बात बताइए, ये ऐसा यदि ये स्टिंग है और ये यदि दोष है तो फिर आफ्टर ऑल क्राइम क्या, कहां पर क्राइम
थी कि सरकार को लग रहा था, केंद्र सरकार को ऐसा शायद लगने लगा कि भाई आपके साथ बहुमत नहीं है और इसलिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।
नहीं, वो बहुमत नहीं है, इसके विषय में बोमई केस और दो रामेश्वर दया आदि केसेस के बाद ये तय हो गया कि ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तय होगा कि बहुमत किसके पास है या किसके पास नहीं है। इसका निर्धारण जो है न राजभवन में होगा न कहीं और होगा, निर्धारण जो है सदन के पटल पर होगा।
अब आप तैयार हैं, बिल्कुल
तैयार हैं। हमारे मामले में जो स्थिति थी, गवर्नर साहब के आदेश पर 28 मार्च फिक्स होती है और अब 28 मार्च से 21 घंटा पहले राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो क्या क्या उचित था।
आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दुरुपयोग किया है अनुच्छेद 356 का।
जी, दूसरी बात ये है, इसमें गवर्नर की रिपोर्ट को आप आधार बता रहे हैं और गवर्नर की रिपोर्ट में कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही नहीं जाएगी।
विनोद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, हरीश जी विनोद जी कुछ कह रहे हैं।
एक सेकंड
जी।
दूसरी बात जो आपने अभी कही कि आप बहुमत साबित करने के लिए तैयार है, हम तो जब सिंगल बेंच के जज ने हाईकोर्ट ने कहा हम तब भी तैयार थे, जब जो है डबल बेंच ने कहा हम तब भी तैयार हैं, और यदि कोई अवॉइड करना चाह रहा है तो वो केंद्र सरकार है या दूसरा पक्ष है, और वो ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन की आड़ लेकर के अपना बहुमत बनाया जाए। आज के दिन एक बात बताइए, जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो 62 है और 62 में भाजपा के विधायक 28 हैं, तो भाजपा के पास कहाँ पर बहुमत है।
मगर तो सदन में
दावा कर दे,
वो सदन में
भाजपा बहुमत का दावा कर रही है और भाजपा के नेतागण एक एक करके एमएलए को कांटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ इनके बड़े जो राष्ट्रीय नेतागण हैं जो अपने को साफ सुथर कहते हैं वो थैला लेकर के गलियों में घूम रहे हैं।
ये तो
एक सवाल आया आपसे, आप लोगों का ये मुद्दा है कि जो अप्रोप्रिएशन बिल था वो पास हो गया बहुमत से, अगर अप्रोप्रिएशन बिल बहुमत से पास हो गया तो फिर 9 लोगों को क्यों निलंबित किया गया।
जी, मैं वो भी बताना चाह रहा हूँ, 9 लोगों ने जब हाउस एडजर्न हो जाता है, स्पीकर एडजर्न करके चले जाते हैं, उसके बाद भाजपा बेल में हंगामा मचाती है, उसमें ये 9 लोग उनको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जो है वो लोग भाजपा के साथ चप्पा चप्पा भाजपा नारे लगाते हुए जो है भाजपा की के साथ बस में राजभवन जाते हैं। राजभवन में राज्यपाल महोदय को बीजेपी के फ्लोर लीडर के लेटर पैड पर चिट्ठी देते हैं।
तो इसका मतलब है उनका हृदय परिवर्तन आकस्मक नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि सदन में आपके पास मेजोरिटी नहीं थी।
मैं अब उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ
संक्षेप में कुल मिला के मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ।
नहीं, आपने सवाल पूछा है तो जवाब देने वाले को उतना समय आपको देना पड़ेगा।
जी,
देखिए, भाजपा ने 26 विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिया कि साहब गवर्नर साहब को दिया, वो भी स्पीकर को नहीं दिया। नोटिस का जो समय होता है चाहे विधानसभा हो लोकसभा में हो वो 9 से 10 के बीच का होता है।
हाँ।
उस समय नोटिस नहीं दिया, उन्होंने स्पीकर साथ के ओएसडी को एक लेटर दिया कि साहब हम जो है विनियोग विधेयक पर अप्रोप्रिएशन बिल पर डिवीजन मांगेंगे, उन्होंने उसको जो है स्पीकर के ऑफिस को मार करके भेज दिया। तो फ्रॉम वेयर द ऑफिस,
ठीक है,
स्पीकर को मालूम कहां से होगा कि साहब ये मांग रहे हैं डिवीजन, और यदि डिवीजन मांगना था तो जितनी ग्रांट्स पास हुई। विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक एक ऑथराइजेशन है कि जो ग्रांट विधानसभा ने पारित की है या लोकसभा ने पारित की है उनको निकालने की अनुमति दी जाए। तो जितनी ग्रांट्स हुई उसके पहले
जी, हम लोग
आप एक सेकंड,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ एक विधेयक में फंस के रह गए, मैं सिर्फ एक संक्षेप में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा हमारा ये जो कार्यक्रम
सवाल पूछा है
जी, जो उसका जवाब आ गया, उसका जवाब आ गया,
नहीं जवाब नहीं आया,
नहीं जवाब इसलिए आया
जी, लगातार सारे विधेयक जो है ये वो कहते हैं कि प्रस्ताव रखते हैं, फिर कटमोशन रखा जाता है, सब वॉइस वोट से निगेट होते हैं, जिस तरीके से वॉइस वोट से वो निगेट हुए उसी तरीके से अप्रोप्रिएशन बिल पर भी स्पीकर महोदय ने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग करवाई और होने के बाद जो है उन्होंने घोषित किया कि पारित हुआ और उसके बाद सदन स्थगित कर दिया।
मैं बस एक एक सवाल पूछ रहा हूं, बस आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं,
आप लोग एक डिसीजन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
हरी जी, बस मैं एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे,
एक सेकंड बराबर नहीं, नहीं मैं आपसे डिस्कशन पे लेना नहीं चाहता,
नहीं नहीं मैं
सिर्फ लिया है तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए,
मैं आपकी पूरी, देखिए हमारा ये जो कार्यक्रम है ये श्रोताओं का कार्यक्रम है, अब तक मैं एक भी श्रोता को शामिल नहीं कर पाया हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन में आपसे
बिल के विषय में पूछना नहीं चाहता,
वो बात हो गई, वो टेक्निकल मामला हमारे श्रोताओं को नहीं समझ में आएगा, वो टेक्निकल मामला है, सिर्फ एक संक्षेप में मैं एक सवाल आपसे कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने अपनी राजनीति के तहत आपकी सरकार को बर्खास्त किया, हाँ या नहीं?
जी
तो मतलब केंद्र सरकार ने दुर्भावना के तहत पर काम किया और धारा 356 का इस्तेमाल किया। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में आप आए और आपने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि आपकी जो बात है वो पूरी हो गई होगी, और ये जो पेचीदा मामला है विनियोग विधेयक का, कार्यक्रम में हम इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, नाम बताएं
जी, मैं उत्तर प्रदेश से मैदिरा बोल रहा हूँ सर, जिला अमरोहा के नौगावा तक एक छोटा सा गांव है सर, अक्सर आपसे बात करती रहती है सर। मैं ये कहूँगा कि जैसा पहले होता था, जिस राजा के पास जितना धन बल होता था वो उसका इस्तेमाल करके वो भी कब्जा कर लेता था, अब ऐसा है जितना इंसान शातिर होता है, जो लीडर जितना झूठा होता है वो अपने धन बल का यूज करने के बाद वो भी हकूमत बना लेता है, जितने वादे करता है वो कोई सी वादे को पूरा नहीं करता, और सेंटर में जिसकी हकूमत होती है वो उसका इस्तेमाल करता जरूर है, अगर इन्होंने भी इसका इस्तेमाल कर लिया तो सर क्या बुरा कर लिया, ये तो राजनीति का ये तो उसूल है, ये चलता चला रहा है, चलता रहेगा सर।
विनोद जी राजनीति का उसूल बता रहे हैं हमारे,
देखिए ऐसा है,
उसूल है सर,
सुनिए
सर, राजा मानना है।
आप आपकी क्या उम्र है, आपकी क्या उम्र है
सर? मैं आपका जो प्रोग्राम है जब से सुन रहा हूँ, जब
नहीं आपकी उम्र कितनी है?
58 साल और 4 महीने।
58 साल की आपकी उम्र है, और ये बहुत से ये प्रोग्राम बहुत से युवा भी सुनते हैं, और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह का तर्क आप पेश ना करें, क्योंकि अच्छा? ये तो कुछ ऐसा लगता है कि कत्ल तो होते ही हैं, तो एक और हो गया तो क्या हुआ? देखिए 94 के बाद और 2005 के बाद उच्चतम जो हमारा न्यायालय है उसने कानून स्थापित किए और एंटी डिफेक्शन लॉ आया इस देश में, जब सरकारें अपने कार्यकाल के मध्य में गिरा दी जाती हैं तो ये आपकी और हमारी बेइज्जती होती है, क्योंकि हमने 5 बरस के लिए लोगों को चुना होता है
और वो सरकारें पहले ही गिर जाती,
और वो सरकारें कोई आकर पहले गिरा देता है, और अगर हमको लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो इस प्रक्रिया को हमें रोकना चाहिए, भले ही कोई कर रहा हो इसको।
हाँ, एक कार्यक्रम में एक और श्रोता है, उनको उनसे बात करते जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं।
मैं बाड़मेर से पठान खान गज्जू कितना रखा।
हाँ बाड़मेर से जी, स्वागत है, अपनी राय रखें आप।
मेरी राय ये है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ गिरा देते हैं, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो कुछ केंद्र सरकार नहीं कह रही है, इसका वजह क्या है? क्योंकि उन पर विश्वास नहीं होता है मुख्यमंत्री का विधायकों पर।
देखिए ऐसा है, सरकारें तो विपक्ष की गिराता है केंद्र में जिसकी सरकार होती है।
हाँ।
इंदिरा जी के जमाने में होता था, पंडित जी के जमाने में होता था,
सबसे ज्यादा
जनता पार्टी के जमाने में हुआ, नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ, अटल जी के ज़माने हुआ अगर आपको याद हो, राबड़ी देवी की सरकार उन्होंने कर दी थी बर्खास्त, लेकिन दोबारा स्थापित करना पड़ा क्योंकि राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। तो ये तो देखिए, ये जो राजनीति है आज की वो ऐसी राजनीति नहीं है जहाँ पर एक दूसरे के लिए मन में हित रख के काम करते हैं लोग, सत्ता हथियाना चाहते हैं किसी तरह से, और वो सत्ता मैं समझता हूँ हथियाना का दौर खत्म होना चाहिए, सत्ता तो जो सौंपी जाती है जनता द्वारा वही इस्तेमाल होनी चाहिए।
लेकिन अगर अगर इस पूरे धारा अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया, हम क्या आज ये कह सकते हैं कि अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिरी है कांग्रेस?
देखिए 1994 का जो जजमेंट मुंबई का, वो तो कांग्रेस के कार्यकलाप के चलते था ना। फिर 2005 में आया रामेश्वर दयाल केस जो बिहार से संबंधित था, तो ये बात सच है। लेकिन जब न्यायालय ने एक लाइन, एक रेखा खींच दी है, तो उस रेखा से बाहर जाना उचित नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि केंद्र में जो सरकारें हैं उनको अपने कदम फूक फूक के रखने चाहिए, क्योंकि इससे उनके उनके इकबाल में इजाफा नहीं होता, उनका इकबाल जो होता है लोगों के बीच में उसमें कमी आती है। अगर आप खसोट खींच के सत्ता हथियाना चाहते हैं तो वो तो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है।
एक और श्रोता है शमशेर सिंह बिष्ट साहब, उत्तराखंड से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। जी शमशेर जी, अपनी बात रखिए।
मेरा ये कहना है कि ये छोटा सा राज्य है, 16 साल इसको हुए हैं, और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में पहली बार ये हुआ है कि बिना राज्यपाल के संस्तुति के राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये हमारे लिए भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है उत्तराखंड वासियों के लिए कि ये कितना कितना गलत है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई जयपुर ले गया, कोई चंडीगढ़ ले गया, मतलब अंदर से इतनी भी नैतिकता नहीं कि हम बिक जाएंगे कभी। तो इस ढंग की स्थिति में हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, ये भी हमें आज सोचने का सवाल है। और मेरा ये कहना है कि नैतिकता की बात कहने वाली भाजपा, जिसने लगातार ये कहा कि 356 नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर ये कहती रही, और वो 2 साल के अंदर उसने ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया उत्तराखंड में, एक छोटे से राज्य में यहाँ एक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।
अरुणाचल की भी बात कर सकते हैं।
देखिए ऐसा है कि जितने भी छोटे राज्य हैं उनमें ज्यादा इस तरह से सरकारें गिराई गई हैं।
लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तेलंगाना में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है।
वो बात सही है, लेकिन सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है। 10 बार, छोटा सा प्रांत है और छोटे से प्रांत की छोटी सी असेंबली होती है और छोटी असेंबली में छोटे आंकड़े होते हैं, और वहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको उससे चतुराई करके आप गिरा सकते हैं सरकार।
क्या इसको
गोवा में कितनी बार सरकार गिरी
जी,
अरुणाचल में अभी जो सरकार गिरी उसी प्रक्रिया के चलते गिरी है। हाँ। और उत्तराखंड का नमूना हमारे सामने है, वहां भी छोटी सी असेंबली है।
ये जो कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि जो केंद्र और राज्य दो यूनिट हैं, और जो हमारा ढांचा बनाया गया जिसको हम कहते हैं कि एक मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, शक्तियों का पृथकीकरण, डिविजन ऑफ पावर्स, आप इसको ये एक दूसरे में घुसपैठ कर रही है, केंद्र ज्यादा पावरफुल हो गया है।
देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे आईन के तहत हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के चलते उसमें एक फेडरल एलिमेंट आ गया,
संघीय ढांचा
आ गया। और वो संघीय ढांचा इसलिए भी आ गया कि केंद्र में मिली जुली राजनीति आज के दिन होती है, तो जो प्रांतीय दल हैं वो केंद्र में सत्तारूढ़ रहते हैं, उनमें सत्ता में शेयर रहता है उनका। और उसके कई फायदे हुए हैं, फायदे ये हुए हैं कि कई जो अलगाववादी तत्व थे और कई प्रांतीय दलों में, वो अब अलगाववादी तत्व जो हैं उनका जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसकी लंबी आयु में एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। आप समझे कि नहीं? लेकिन विपरीत तौर पर वो जो फेडरेशन है वो वीक भी हुई है, क्योंकि केंद्र के पास बीच में कोलिशन पॉलिटिक्स चलता था। तो जो शिवसेना है उसने जो प्रांतों में सरकारें गिराने का काम है उस पर तनकीद की है, और मैं समझता हूँ कि भाजपा को इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो प्रांतीय दलों के बीच में ऐसा ना अपने आप को प्रदर्शित कर दे कि ये लोग तो हमारे खिलाफ हैं और ये हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी, और तमाम उन लोगों का शुक्रिया जो कि कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि राजशाही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिजाउल करीम सिद्दीकी की हत्या के पीछे संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के सिख नेता सूरन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली है। सूरन सिंह की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्रिटेन के दौरे पर गए अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने युवाओं से कहा है कि वो निराशावाद को खारिज करें। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल दक्षिण तुर्की के प्रवासी शिविरों का दौरा कर रही हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा इंडिया बोल में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।